मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 24 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। पहली सूचना तो यह है कि शनिवार और रविवार इन दोनों दिनों में डेली ऑडियो लेक्चर नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स यानी कि अखबार की जो कटिंग्स होती हैं वो कल आपको हमेशा की तरह मिलती रहेंगी। और साथ ही कल आपको एक साप्ताहिक प्रश्न दिया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर होता है और उसका मकसद यही होता है कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है या सिलेबस को एक बार वो जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो अपना इन प्रश्नों के आधार पर अभ्यास लिखने का अभ्यास, उत्तर लिखने का अभ्यास कर सके। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले आइए कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, कह लीजिए, ये दूरदर्शन पर भी थी और रेडियो पर भी थी और यूं कह लीजिए कि आज के अखबारों में भी इसे थोड़ी सी जगह मिली है, वह है कि अब सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जो महिला अधिकारी हैं उन्हें स्थायी कमीशन दिया जाएगा, स्थायी कमीशन दिया जाएगा। और ये जो स्थायी कमीशन दिया जाएगा वो जो हमारी आर्मी है यानी कि थल सेना के लिए, देखिए, जो हमारी थल सेना है इस थल सेना के 10 विंग में दिया जाएगा, उसके जो 10 विभाग हैं उनमें दिया जाएगा। देखिए, सभी में विभाग होते हैं ना। अब आप आर्ट्स ले रहे हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप देखिए कि आर्ट्स में कितने सारे विषय हैं तो उसके विभाग हैं। आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें साइंस डिपार्टमेंट अलग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, आर्ट्स का डिपार्टमेंट अलग है, तो अलग अलग विभाग होते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो इस तरह से अलग अलग विभाग होते हैं। सरकार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ही मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से आर्मी के भी अलग अलग विभाग हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आर्मी एजुकेशन कोर है, सिग्नल्स का डिपार्टमेंट है, इंजीनियर्स का है, आर्मी एविएशन है, आर्मी एयर डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आर्मी आर्डिनेंस है, आर्मी सर्विस कोर है, आर्मी इंटेलिजेंस है। ये मैं जानबूझकर के आपको नाम बता रहा हूँ ताकि अगर कभी अखबारों में ये शब्द आप पढ़ें तो समझ सकें कि बेसिकली ये क्या है, है ना। तो ये इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इन अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्हें स्थायी कमीशन दिया जाएगा। लेकिन एक डिपार्टमेंट है जिसके बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है दोस्तों, वो है कॉम्बेट विंग। कॉम्बेट विंग, कॉम्बेट का मतलब जहां जंग, सीधे सीधे जंग लड़ी जा रही है। देखिए, आपको मालूम होगा कि सरकार ने ये जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नहीं, अनुच्छेद 15 आपको ध्यान होगा, याद करने की कोशिश कीजिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, जिसमें लिंग के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ये बात कही गई है। तो अभी तक आर्मी में महिलाओं के साथ क्या भेदभाव होता था, तभी तो वो कह रहे हैं। तो भेदभाव जो होता था मित्रों, आइए हम थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। आर्मी में आप यूं कह लीजिए कि ऑफिसर्स की जब कमी होने लगी तो उसे पूरा करने के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नियुक्तियां की गई, मिडिल लेवल पर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो इसके तहत जो नियुक्तियां होती थी उसमें शुरू में तो यह था कि वो 10 साल तक नौकरी करेंगे, बाद में इस 10 साल को बढ़ाकर 14 साल तक कर दिया गया, है ना, कि वो 14 साल तक सर्विस करेंगे और सर्विस करने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, यानी कि उनकी टोटल जो लेंथ ऑफ सर्विस होती थी वो 14 इयर्स की होती थी। अब स्थायी कमीशन के तहत अब उनकी जो सर्विस की लेंथ ऑफ जो सर्विस है वो बढ़ करके 20 वर्ष हो जाएगी, 20 साल तक वो नौकरी कर सकेंगी और साथ ही साथ नौकरी खत्म होने के बाद बकायदे वो पेंशन की भी अधिकारी होंगी, ये अब परिवर्तन आया है। तो अब आप देखिए कि पुरुषों के बराबर ही उन्हें अब अधिकार दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, मेरी समझ से अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्थायी कमीशन दिया गया है इसका क्या अर्थ है। आप एक बात सोच सकते हैं कि मैं क्यों इतने विस्तार के साथ इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आर्मी से में तो आपको जाना नहीं है, सिविल सर्विस का इसे संबंध नहीं है। दोस्तों, इसका संबंध है, इसलिए कि जो महिला अधिकार है या महिलाओं की जो स्थिति है, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। और हमेशा आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, मेंस में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं और इनकी संख्या भी कम से कम दो तो होती ही होती है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको मालूम होना चाहिए। यहां तक कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं महिला अधिकार पर या महिलाओं की स्थिति पर, उसमें भी इसका जिक्र जरूर आना चाहिए। इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात की है। और फिर फंडामेंटल राइट से तो ये जुड़ा हुआ है ही। एक बात यहां और बताना चाहूंगा, प्री की दृष्टि से मैंने कहा कि कॉम्बेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से सेना पर छोड़ दिया है, कॉम्बेट विंग के बारे में, है ना, कि सेना डिसाइड करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि नहीं नहीं इसमें मत दीजिए, सेना डिसाइड करे कि इसके बारे में वह क्या निर्णय लेती है। तो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये विंग, जो जंग का जो विभाग है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। मित्रों, दो छोटी छोटी सूचनाएं जैसी जो खबरें थी वो मैं आपको और देना चाहूंगा। कोयला उत्पादन के बारे में हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने फिर से एक बात कही है कि बहुत जल्दी हम कोशिश में हैं कि हमें कोयले का आयात न करना पड़े। अगर हम कोयले का आयात नहीं करेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत का अंग हो गया। और आपको मालूम है कि लगभग शायद एक महीने पहले की बात होगी कि सरकार ने जो कोयला खदानों को, यानी कह लीजिए कि खदानों से जो कोयला निकाले की जो जिम्मेदारी है, अब वो प्राइवेट कंपनीज को देना शुरू कर दिया है। और उसमें यही उम्मीद है कि कोयले पर हमारा जो हमारी जो निर्भरता है आयात पर, वो कम होते होते शून्य पर पहुंच सकेगी। तो मुझे लगता है कि जो कोल इंडस्ट्री है या कोल माइनिंग है, अपने आप में एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इमर्ज हो रहा है। और इसी के साथ ही एक और खबर है, वो खबर ये है कि जो दिव्यांग जन है उनको भी अब अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किया गया है। और इसके तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के तहत। तो जो अंत्योदय अन्न योजना है, इसे आपको अपडेट कर लेना चाहिए कि उसमें दिव्यांग जन भी शामिल कर लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। और आज के मेरे मुख्य विषय का संबंध है उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास कह लीजिए कि स्थिति कह लीजिए। अगर आपने दूरदर्शन न्यूज ध्यान से सुना हो, और मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं फ्रेंड्स कि आपको सुनना ही चाहिए। देखिए, मेरे पास बहुत से मेल्स भी आते हैं, बहुत से सजेशन भी आते हैं कि सर आप स्टूडेंट को बताइए कि वो ये भी चैनल देखें, इस पर डिस्कशन आता है, उस पर डिस्कशन आता है, इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन आता है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए हर चैनल अपने अपने ढंग से सब्जेक्ट चुनते हैं, अपने अपने ढंग से एक्सपर्ट को बुलाते हैं, अपने अपने ढंग से क्वेश्चंस रेज करते हैं और फिर उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसमें जो सबसे विश्वसनीय मुझे जो लगता है वो दूरदर्शन लगता है, दो दृष्टियों से। विश्वसनीय इसलिए नहीं कि मतलब वहां के लोग, वहां जो आते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इस रूप में नहीं कह रहा हूं। पहला, विश्वसनीयता का आधार यह है कि चूंकि दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरकार उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझ रही है। और चूंकि सरकार इंपॉर्टेंट समझ रही है, इसका मतलब है कि यूपीएससी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट समझेगी। तो विषय का चयन उनका सीधे सीधे इस तरह का होता है जो सिविल सर्विस से हमारा जुड़ा हुआ होता है। दूसरे, विश्वसनीयता की बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि जो एक्सपर्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर विदेश मामलों पर बातचीत हो रही है तो वो एम्बेसडर्स को बुलाएंगे, इस तरह के लोगों को बुलाते हैं। वहां राजनीति के से जुड़े हुए लोग कभी कभार ही होते हैं, आपने महसूस किया होगा। ये बात अलग है कि किसी पत्रकार को बुलाया जा रहा है या किसी इंटेलेक्चुअल को बुलाया जा रहा है, उसकी अपनी धारणा सरकार के पक्ष में है विपक्ष में, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग उतने नहीं होते, कभी कभार भले ही हो जाए। तो फिर जो वो बात कहते हैं उन बातों पर आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं अक्सर दूरदर्शन न्यूज की बात करता हूं और मुझे लगता है कि अगर आप सही मायने में दूरदर्शन न्यूज देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपकी जरूरत पूरी भी हो जाती है। तो कल के दूरदर्शन न्यूज पर देखिए, एक तो उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अभी सरकार क्या क्या कर रही है। और दूसरा, चीन और अमेरिका के बीच में आप देख रहे हैं कि कैसे तनाव की स्थिति और बढ़ गई है। अमेरिका ने कह दिया कि ह्यूस्टन में जो चीन का अपना जो दूतावास है उसे वो बंद करे, तो तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो उस पर भी छोटी सी बहस थी और उसमें भारत की भी चर्चा थी कि भारत का इसमें क्या रोल है, भारत की स्थिति क्या होगी, भारत की सिचुएशन क्या बन रही है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में जो दूरदर्शन पर दिखाया गया वो बड़ा खूबसूरत था और उसका संदर्भ यह था अब संदर्भ की बात मैं थोड़ा सा कर दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है, जो 3000 करोड़ रुपए की परियोजना है, और मणिपुर के गांव में, वहां के लोगों के घरों में इस परियोजना के जरिए टेप वाटर यानी कि नल से पानी पहुंचाया जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है और इसमें टारगेट रखा गया है कि 2024 तक प्रत्येक घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपने रेडियो न्यूज सुनी हो तो रेडियो न्यूज में जल जीवन मिशन के बारे में भी थोड़ी सी बातें बताई गई थी। इसका मतलब है कि अगर आप रेडियो न्यूज सुन रहे हैं तो जल जीवन मिशन के बारे में भी आपको कुछ बातें पता लग जाएंगी। तो दोस्तों, जब भी आप न्यूज सुने बहुत इत्मीनान के साथ सुने, ये मेरा विशेष रूप से आप सबसे आग्रह है। अगर आपने दूरदर्शन की वो खबर नहीं देखी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे आप फिर से एक बार देख लें और उसके पॉइंट्स नोट कर लें। जैसे कि उसमें उन्होंने बताया गया है कि वहां बांस का उत्पादन बहुत होता है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है, वहां खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है वो क्या कैसे हो रहा है, वहां की जो राजधानियां हैं, वो जितनी भी राजधानियां हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, उन सबको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जो उनके जो जिले हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है ताकि उनमें आवागमन बढ़ सके। कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि ये हमारे एक्ट ईस्ट नीति के बिल्कुल प्रवेश द्वार है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो जब आप न्यूज ध्यान से सुनेंगे, मैं इसके बारे में अब आगे आपको कुछ भी बताने नहीं जा रहा हूं क्योंकि एक तो वक्त ही इजाजत नहीं दे रहा है और दूसरा यह कि दूरदर्शन न्यूज को जब आप फिर से देखेंगे सुनेंगे तो तथ्य आपको बिल्कुल स्पष्ट होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इसी में एक ईमेल मुझे मिला है दीक्षा मेघवाल का, जो उदयपुर राजस्थान से हैं, जिन्होंने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और मेरा आशीर्वाद मांगा है। तो दीक्षा, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। दोस्तों, एक मेल मुझे मिला है एकता सिंह का हनुमानगढ़ राजस्थान से। उन्होंने लिखा है कि वो बहुत समय से डेली ऑडियो लेक्चर सुन रही हैं और राजस्थान के मुख्य परीक्षा में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। एकता, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और आगे की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, खासकर हमारे जो ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट हैं, कि जो 6 महीने से अधिक से रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो अपनी समीक्षाएं लिखें। बहुत सी समीक्षाएं मुझे मिली हैं और उसमें खासकर मैं अमृत नारायण सतपति का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी समीक्षा लिखी है। तो अमृत, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। अन्य मित्रों ने भी लिखी हैं और सबने अपने अपने ढंग से अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है। सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन अब जो दूसरे मित्र हैं जो ईमेल के माध्यम से मुझ तक पहुंचे हैं, उनके नाम हैं दोस्तों शिवांग तिवारी, अमित कुमार सिंह कोची केरल से, ब्रजेंद्र तिवारी, विवेक ठाकुर कोलकाता से, जालम गायकवाड़ खरगोन मध्य प्रदेश से और रिंकू पाल, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।